ृंगोस्तवाचिम राधाकुंडम गिरीवर महो राधिका माधवासम प्राप्त जस प्रथित कृपया श्री गुरु संकल्पतरुभ्य कृपा सिंधुभ्य पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महाबदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरस्तिते नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै सदालयै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। भक्त्या विहीनाय पराधलक्ष्यै क्षिप्तास्य कामादितरङ्गमध्यै कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना विन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मेतया सर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया इति विज्ञाय राधे तं न मां शरणन्तिके। বেশি করে লাগাবে আমি দেখতে পাই না। এটা বড় যদি বাল্ব হয় তাহলে ভালো দেখত, তুমি দেখতে কোনো বাল্ব আজকাল দেখা একটু কম হয়ে গেছে, চশমাটাও ঠিক নেই। আচ্ছা ভাগবত দশম স্কন্ধ 39 অধ্যায়, কল হাম লোগোনে অক্রূর কা নন্দগাঁও জানা ইয়ে বর্ণন কিয়া আর সবেরে কৃষ্ণ জানে কে লিয়ে প্রস্তুত হ্যাঁ বলদেবজি কে সাথ অক্রূর উনকো রথ মে চড়া রহে আর উস সময় মে গুপ্ত গুপ্ত পুছু গোপীয় নে কহা। इसके संबंध में हमने बताया कि तीन श्लोक उन्होंने पहले कहे, इसके बाद में और क्या हुआ। तो ये क्या है भाई, ये क्या है? तीन श्लोक गोपियों ने कहा पहले, अहो विधाता विधाता तव न क्वचित गया। अक्रूर को देखा और वो ले जा रहे हैं कृष्ण और बलदेव को रथ पर, यह देख करके गोपियां अपने भाव को छिपा न सकी और वह निर्लज्ज होकर सामने आ गई। उस समय में उनकी लज्जा तक जाधरी रह गई। इसलिए इसका प्रतिवाद करने के लिए वो खुद आई। जब देखा नंद बाबा ने प्रतिवाद नहीं किया, यशोदा मैया ने नहीं किया, बड़े बूढ़ों ने नहीं किया, मैया यशोदा ने नहीं किया, तब इनसे रहा नहीं गया और इसका प्रतिवाद करने के लिए स्वयं ही आगे बढ़ी। उसमें लज्जा इत्यादि को छोड़ दी। आई थिंक दैट आफ्टर माई क्लास एनी वन एक्सप्लेन्स यू एंड यू आर सेटिस्फाइड बाई देयर एक्सप्लेनेशन, वेरी गुड। ये क्या है देखो गड़बड़ न हो जाए, ये भी गया है वो भी गया, ठीक। ये बहुत तेज बीच का होना चाहिए ना, एक तो कम कर दो 20-25। हेलो गड़बड़ मत करो, अभी तो वैसे ही समय हो। ये ठीक सत्यों ने श्लोकों में गोपियों जी ने विधाता को तीन रूपों में उन्होंने ग्रहण किया। पहले में निष्ठुर और दूसरे में दुरात्मा और तीसरे में दत्तापहरण की। देखिए दत्तापहरण तो तीन, सुनो तुम, तीन प्रकार के उन पर दोष लगाया। पहला निष्ठुर विधाता को और दूसरा लगाया दुरात्मा। दुरात्मा माने क्या? आत्मा जिनकी दुष्ट है, दुराचार जिसको कहते हैं, तो दुराचार नहीं कहा जाएगा, दुरात्मा। और तीसरा है दत्ता परमाने जो दे करके, दान दे करके और चीज को ले लेता है, उसको क्या कहते हैं? दे करके और उसको अपहरण कर। जैसे कि नृग महाराज ने गायों को दान करके और फिर दान की हुई गाय में से भी एक को फिर से दान किया, इसलिए ब्राह्मणों ने उन्हें अभिशाप पास किया। ब्रह्मा जी को, विधाता को इन्होंने तीन दोष लगाए जो पहला तो दो तो स्पष्ट किया, आपकी आपका जो आचार है जो पहले प्रणय करा करके प्रेम से मिला दे दो और फिर उनको अलग कर दे दो, निष्ठुर की भांति, कोई उसमें प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, बल्कि छोटे छोटे अबोध बालकों की तरह तुम्हारी ये क्रिया निष्फल है। पहली बात ये, तुम निष्ठुर हो। और दूसरा बतलाया परोक्ष मसाधु ते कृतम, कृष्ण को इतना सुंदर है और इसको देखने का हमें सुयोग दिया, दर्शन करने के लिए आंखें दी और यह सुयोग दिया जी कृष्ण का हम दर्शन करें, जो निखल सृष्टि का सार उसका रूप है, और उसको दे करके दिखलाया। अभी अभी हम लोग उसको उससे भी मिले, अभी तुरंत अभी मिले और तुरंत उसे छीन दिया। जैसे कोई भोजन दिया और उसका पहला ग्रास उठाया, उसकी सुगंध केवल आई, खा नहीं पाया और थाल को निकाल दिया, ऐसा तुम और तीसरा लगाया क्रूरस्तुम, क्रूर अक्रूर नाम धारण करके आया, और जो दान दिया था आंखें और कृष्ण का रूप दर्शन करने का, या तुमने दत्तापहार दी हुई चीज को, तुमने दान दी हुई चीज को फिर से तुमने ले लिया, ये तीन दोष लगाए हैं। जिसमें हमने दो के संबंध में कुछ वर्णन किया, अब तीसरे के संबंध में गोपियां जो कह रही हैं, क्रूरस्तम अक्रूरम मात्र, ये विष्णु पुराण में ऐसा लिखा गया है, सारंग समंत गोष्ठस्य विधिना हरतो हरिं प्रहृत्य गोप ज्योतिषु निर्घृणेन दुरात्मा। यहाँ विधाता को दुरात्मा कहा गया है, ब्रज गोप भूमि की सौंदर्य सार जो कृष्ण का रूप है, उस हरि को तुम हरण करके मथुरा ले गए हो वृंदावन से, ऐसे विधाता गोप्रमणियों को निष्ठुर और दुरात्मा मत आहत कर दिया गया। निष्ठुर और दुरात्मा की भांति गोपियों को आघात पहुंचाया है, विष्णु पुराण में भी ऐसा लिखा है। निष्ठुर हृदयहीन किसको कहते हैं, दूसरों का सुख दुख समझने की जिसमें बुद्धि नहीं है वो हृदय हीन होता है। जैसे कि चित्रकेतु महाराज का लड़का हुआ तो उनकी रानियां क्या कह रही हैं, हम बाज होती तो अच्छा रहता, ये लड़के देकर के इतना सुंदर और अभी उठा लिया 5 वर्ष की उम्र में, तुम्हारे जैसा हृदयहीन, यही सब चीजें वहां पर भी उनको बतलाया बुझाता को। और प्रवंचक मैंने ठगने वाला, तुम ठग हो विधाता के प्रति। कृष्ण बिरहनी ब्रज गोपियां इतना ही कह करके शांत नहीं हुई, ये तुम हृदयहीन हो निष्ठुर हो प्रवंचक हो, आगे भी और भी कह रही हैं। वो क्या कह रही, हाय हाय विधाता, ये जो संसार की रचना करने वाला विधाता है, इसका नियम बनाने वाला है, वह निर्दय दुरात्मा तो है ही है, यही उसके लिए गाली गलौज ये यथेष्ट नहीं है, बल्कि वे दत्तापहारी, दान दे करके आ उसको छीन लेना, ये बड़ा भारी पाप है। वे अत्यंत क्रूर, और इसीलिए क्रूर, इस समय वो विधाता क्रूर अक्रूर नाम धारण करके ये विधाता ही आया है, ये दूसरा नहीं है, वो स्वयं आया है। इसने जो हमें आंखें दी थी, कैसी आंखें, अत्यंत सुंदर, और इस आंखों के द्वारा ये सृष्टि का सार सौंदर्य, जिसके एक एक अंग में वो भरा पड़ा है, सृष्टि के सौंदर्य का सार आंखों में, पलकों में, अंगों में, कपोलों में, मुस्कुराहट में, उसके बस्तक्षल पर, उसके ललाट पर, उसके केश में, उसके कमर में, उसके पैरों में, एक एक सौंदर्य का साथ छिपा है। एक समय पद्मा जी चंद्रावली जी की सखी कहीं विशाखा इत्यादि जी से मिल गई, तो उन्होंने कहा आज हमारी सखी ने कृष्ण को ऊपर से नीचे तक सारे अंगों को देख करके लुप्त हो गई और देखती रह गई नीचे से ऊपर तक, सिख से कहा नख तक, पैरों के नख से लेकर के पूरा देखा। तो विशाखा जी बोली हम दुर्भागी हैं और हमारी सखी भी बड़ी दुर्भागी है, इसलिए दुर्भागी है, यदि हमारी सखी कृष्ण के अंगों का कभी यदि देखती हैं अपलक नेत्रों से यदि भ्रुकुटी पर उनकी नजर पड़ रही, अब वो अपने आंखों को ऊपर से नीचे तक नहीं देखा। उन्होंने आज तक कृष्ण के पूर्ण अंगों को कभी नहीं देखा, बस एक ही अंग पर टिक गया। कभी नक्षचंद्रिका पर पड़ गई तो वहीं पर रह गया, उसे नहीं पता। कभी बस तक्षल पर पड़ गया, कभी कमर पर पड़ गई त्रिवली तो वहीं पर पड़ गई। दूसरे यह सुन करके वो बड़ी लज्जित हो गई। तो उसी को यहां पर कह रहे हैं, ये अक्रूर बन करके, ये क्रूर ही अक्रूर बन करके आया है। यदि अक्रूर होता, क्रूर नहीं होता, तो ऐसा आचरण नहीं करता। ये कृष्ण को ब्रज से ले जाता हम गोपियों से दूर। क्रूर के अतिरिक्त और किसी काम व्यक्ति के लिए संभव नहीं। ये अस्वस्थामा रानियां सोई हैं और उनके गोदी के पार्टी में उनके लड़के सब सोए हुए हैं, धृष्टद्युम्न इत्यादि सोए हैं। सोने की अवस्था में गया और उन्हें तलवारों से उन बच्चों के पांचों के सिर काट लिए। अस्वस्थामा उन्हें इसको धृष्टद्युम्न को मारा, शिष्योद्यम ने द्रोणाचार्य को मारा था, उसका बदला लेने के लिए इसको मारा। और उस शिविर में जितने आदमी सोए थे रात में, आधी रात के समय में, सबका विनाश किया, किसी को वहां से निकलने नहीं दिया। वो तो पांचों पांडवों को कृष्ण चलाकी से दूसरी जगह लेकर के चले गए थे, इसलिए वह नहीं थे। और काट करके उनका मुंड दुर्योधन के पास में ले गया, कहां, रण क्षेत्र में, आधी रात के समय में, यानी पांचों पांडवों का सिर में काट लाया और लेकर के उनके हाथों में दिया। दुर्योधन का बड़ा क्रोध था, उसने भीम का सिर मांगा और उसको लेकर के दोनों हाथों से ऐसे दबाया, चूर्ण विचूर्ण हो गया। कहे तुमने धोखा दिया, ये भीम का सिर नहीं हो सकता, ये किसका सिर हो, ये तो मालूम होता भीम के बच्चे का ये सिर है। भीम का शरीर तो वज्र से भी अधिक कठोर है और वो इतना जल्दी चूर्ण नहीं हो सकता। तुमने हमको धोखा दिया, शायद हमारे वंश की परंपरा का तुमने नष्ट कर दिया। अरे धोखेबाज तू निष्ठुर, दुर्योधन ने भी उसको निष्ठुर कहा और उन्हें लग गया कि हमारे वंश को एकदम सब समाप्त कर दिया तूने। और ये कहता हुआ वो अंतिम श्वास लेकर के मर गया। ये है क्रूर लोग, ये पुतना से भी अधिक क्रूर हैं। ऐसी तुलना दे रही हैं गोपियां, केवल गोपियां एक नहीं, कितनी गोपियां हैं, लाखों गोपियां। वो तो पांच मरे और ये लाखों गोपियों को, लाखों ब्रजवासियों को, सबको ये मार रहा है। ले जाने कृष्ण सबके प्राण है और कृष्ण वो ले गया तभी मरे, इसलिए ये यथार्थ में ये क्रूर है। इस क्रु के अतिरिक्त अक्रु से ये काम नहीं हो सकता। इस प्रकार से कृष्ण विरह में जर्जर गोपियां, विरह में उन्मादित होने वाली उन्मादिनी गोपियां, विधाता के प्रति निष्ठुरता, दुरात्मा और अंत में दत्तापहरण, दानदेही चीज को पुनः ले लेने का आरोप लगाया। हाय विधाता, तुमने कृपा करके जिस दिन ये आंखें दी और सृष्टि का सार सौंदर्य जोग माया का बल दिखलाने के लिए, प्रदर्शिता जोग माया बलम प्रदर्शिता, और तुमने दिया और उसको हमने देखा, अपना जीवन हमने कृतार्थ माना। उस दिन हम लोगों ने कृष्ण का जब रूप देखा तो हमने कहा कि सृष्टि का ये कौशल है, सृष्टि रचना का अपूर्व कौशल। कृष्ण यदि जगत में नहीं आते तो नहीं आते, तो सृष्टि का अपूर्व कौशल क्या है, सृष्टि का सार। इसलिए बतला वृंदावनम, वो क्या है मथुरा की रमणियां कह रही, ये भी है। और एक वृंदावन पृथ्वी में श्रेष्ठ है क्योंकि गोपियां वहां पर हैं। विष्णु के कीर्तिम जब देव के सुत पदम लब्ध लक्ष्मी, लब्ध लक्ष्मी माने क्या, लब्ध लक्ष्मी माने क्या, कृष्ण के सौंदर्य रूपी शोभा ये गोपियां निहार रही। इसलिए ब्रज में सबसे श्रेष्ठ क्यों है, वहां पर गोपियां हैं। गोपियां किस लिए, कृष्ण का यह सौंदर्य पान करती है इसीलिए। तो ब्रह्मा जी ने, विधाता ने यह सुअवसर हमको दिया, तुमने दिया था, और आज अक्रूर नाम धारण करके इन चक्षुओं को तो फिर अब निकाल लेना, दिया और फिर उसको निकाल लेना, ये तो तुम बड़े भारी क्रूर हो। यदि कहो जो अक्रूर तो कृष्ण को लेने के लिए आया, उनकी आंख तो निकालने के लिए नहीं आया, तो इसका मतलब तो यही है ना, यदि कृष्ण को ले गया तो उनकी आंखें निकाल लेना ही है। इसलिए यथार्थ में है तुम बहुत दुरात्मा हो और द्रोह देहिक देश नेत्र अंश। इसे तुम यदि अपहरण कर रहे हो कृष्ण को यहां से, तो इसका मतलब है हम लाखों गोपियों का आंख निकाल रहे हैं, और केवल वही नहीं, वो तो सभी हम लोग मर जाएंगे, इसका पाप भी तुमको लगेगा। शायद गोपियों के इसी अभिशाप के कारण अंत में अक्रूर को क्या हुआ, द्वारका से चला जाना पड़ा कृष्ण को छोड़कर के उनको, और उनको द्वारका छोड़ करके जाना पड़ा, और यहां तक कि काशी गए, काशी को छोड़ना पड़ा, और कहां मिथिला जाना पड़ा, बड़े दुख उनको भोगने पड़े। फिर कृष्ण ने करुणा करके फिर उनको क्षमा किया। इसलिए इस अक्रूर को कृष्ण का दर्शन भी नहीं हुआ, और अंत में द्वारकापुरी छोड़कर के कृष्ण अंतर्ध्यान भी हो गए, सबको छोड़ दिया वो अपराध के कारण। गोपियों को बहुत दुख, अपराध मैंने क्या, अपगत राध, राध मैंने क्या, प्रीति। अपराध मैंने वो होता है जिस हम नाम को करते हैं, जिस वैष्णवों की सेवा करने से कृष्ण की प्रीति मिलती है, जिस सेवा कृष्ण के प्रति, जुगल के प्रति जो सेवा की भावना है, जिस कृत्य के द्वारा कारण, जिस कार्य के द्वारा, जिस आचरण के द्वारा ये सब नष्ट हो जाता है, उसको अपराध कर अपगत हैया से राध, राध माने प्रीति, वो प्रीति ही नष्ट हो जाती है। इसे भाई वैष्णव के प्रति कोई भी आचरण करेगा, उनकी आलोचना करेगा, उनके विरुद्ध में निंदा करेगा, धाम के प्रति अपराध हो, नाम के प्रति अपराध हो, तो ये लोग नहीं सह, वो प्रीति नष्ट हो जाती है। पाप करने से वो प्रीति नष्ट नहीं होगी। जगाई मधाई, देखो तीन विचार देखो, एक जगाई मधाई का उद्धार महाप्रभु जी ने किया, दूसरा प्रकाशानंद प्रबोधा क्या सार्वभौम भट्टाचार्य को उन्होंने, महाप्रभु जी ने उद्धार किया, और तीसरा प्रकाशानंद, तीन है ना। इनमें सबसे दुरात्मा कौन है, सबसे बड़ा अपराधी कौन है, प्रकाशानंद। ये हमारे जगाई मधाई जी पाप किया, अपराध नहीं किया, उसको फुर्सत नहीं थी अपराध करने का, मद्यपान कर लिया, इधर उधर मारपीट किया, और इसके बाद में पड़े रहते थे, किसी वैष्णव की निंदा नहीं की। इसलिए महाप्रभु जी ने या नित्यानंद जी ने उन पर करुणा कर दी, सहज रूप में हो गया, कितने दिन में, एक दो दिनों में ही वो उद्धार पा गया। और प्रकाश ये सार्वभौम भट्टाचार्य जी को उद्धार होने में कितना समय लगा, महीनों लगा, 7 दिन, उसके पहले से ही 7 दिन तो सुना, और उसके पहले उनके संपर्क में कितना आया?
महीने
करीब लगे। क्यों?
अपराधी
नहीं, उतना अपराधी नहीं, वैष्णव की निंदा नहीं करता था, किंतु कृष्ण का गुणगान इत्यादि नहीं करता था और उनके प्रति द्रोह आचरण भी नहीं कर, कभी नहीं सुना गया कि किसी वैष्णव की उसने निंदा की हो। किंतु ये उन्होंने कहा कि भगवान निराकार निराकार हैं, निर्विशेष हैं, ये कहा। इसलिए उसको कृपा करने में महाप्रभु जी को विलंब हुआ और नित्यानंद प्रभु की सहायता ने महाप्रभु पूरा कृपा उस पर जोर लगाना पड़ा, तो बड़ी मुश्किल से एक महीने में उसका सुधार हुआ। और प्रकाशानंद सरस्वती क्या था? घोर मायावादी, वैष्णव को भी अपराध मान करता था और कृष्ण के प्रति भी अपराध करता था, घोर निंदुक था। चैतन्य महाप्रभु की भी उसने निंदा की, महाघोर। इसलिए उसको बहुत समय लगा। कब से? महाप्रभु जी अपनी गृहस्थ लीला में जब थे उसी समय में कह रहे हैं, काशी से पड़ा उसी समय से उनकी बातचीत की चर्चा कर रहे हैं, और फिर गए संन्यास लेकर के वहां दक्षिण गए, इधर उधर गए, और वहां से घूम करके आकर के तब फिर वृंदावन में आते समय में गए। उस समय भी नहीं, जब लौट करके आए तब इसमें 2-3 वर्ष का समय लगा। क्यों? यह अपराधी था, घोर अपराधी, वैष्णव अपराधी था, भगवत अपराधी था, नामा अपराधी था, सब प्रकार के अपराधी। इसलिए इस पर करुणा करने में बहुत समय लगी। इसलिए ये विचार करके देखना चाहिए वैष्णव के प्रति कोई किसी प्रकार का अपराध न हो। किसी प्रकार से भजन करने हम आए हैं, किसी वैष्णव की निंदा न हो, धाम के प्रति कोई अपराध न हो, मन में कल्पित भावना नहीं आए। अपिचेत्सु दुराचारो, यदि दुराचारी है तो छोड़ दो, किंतु भगवान का एक निष्ठ रूप में, एकांतिक रूप में भजन करता है, खबरदार निंदा मत करो, उसको साधु ही मानो। क्यों? अजामिल की भांति भगवान का नाम लेने पर नारायण का वो काम तो करता रहा, किंतु तो उसका कोई बीस नहीं रहा। इसलिए ऐसे वैष्णव जो एकांतिक रूप में राधा कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, भजन करते हैं, उनमें दुराचार भी कोई देखो, सुदुराचार, तो फिर निंदा मत करो। क्या करो? स्वच्छ स्थान से निगच्छति, क्या है? अपिचेत सुदुराचारो भजते इमाम अनन्य भाव साधु रेव सम्मंतव्य सम्यक वशित ही सीपरम भवति धर्मात्मा। धर्मात्मा तो उसी समय हो गया, अब प्रकाश में उसकी धर्मात्माता अब कुछ दिनों के बाद ही नहीं आ जाए। उस समय उसका कृत्य जो कर रहा है सुराचार, उसका संग मत करो, किंतु निंदा मत करो, उसके हृदय निर्मल हो जाएगा बहुत जल्दी, ऊपर में प्रकाशित हो जाएगा, नहीं ये परम धर्मात्मा है। बेस्या केवल 3 रात हरिनाम सुना हरिदास ठाकुर से, जिस समय पहला नाम सुना उस समय क्या हुआ? बस उसमें प्रवेश कर गया, उसी समय धर्मात्मा हो गई। किंतु 3 दिनों के बाद में लोगों ने देखा जी यह धर्मात्मा, इसको समझना चाहिए। मत निंदा करो साधु संतों की, जल्दी से ही वो धर्मात्मा हो जाएंगे। उनका किया हुआ दुराचार का 20 उसमें नहीं, वो तो पहले ही ले लिया। इस शास्त्र में जगह जगह इसका वर्णन किया गया। इसलिए साधु निंदा मत करो, गुरु की अवज्ञा मत करो, शास्त्रों की निंदा मत करो, देवताओं और भगवान का नाम बराबर है, यह सब मत करो। जो 10 महापराध इसलिए इनकी दशा अक्रूर की हुई, कृष्ण के रहते हुए भी उनको वहां से भागना पड़ा, और फिर ब्रज में नहीं आए, आए कोई इतिहास नहीं मिलता। किंतु उद्धव जी का देखो, उद्धव जी का क्या हुआ? कृष्ण ने भेजा भी और पीछे भी यहाँ की घाट बन करके ब्रज में, हमारे श्याम कुटी में, गोवर्धन में, एकदम मान कुसुम सरोवर के पास में, जब कभी वहीं से प्रकट हो जाते हैं। उनका नित्य निवास इस ब्रज में हो गया, गोपियों की चरण धूलि की सेवा करने का। इसलिए ये सब चीजों को याद रखो भजन करने में, तब भगवान की कृपा होगी, इन चीजों को समझोगे। इसलिए करें, तुमने बहुत अज्ञ की भांति से आशा किया, कृष्ण को यहां से हरण करके ले गया है क्रूर। इच्छा पूर्वक ले गया, विष्णु पुराण में भी ऐसा देखा जाए, ओहो गोपी जनस्य दर्शयिता महानिधिम उत्क्रांताब्ज नेत्राणी विधात्रा करुणात्मना। हाय हाय, गोपियों के सामने महानिधि माने महासंपत्ति को दिखला करके, और दिखलाते दिखलाते फिर उसको खींच लिया। आज विधाता गोपियों के नयन नेत्र को निकाल रहे हैं। हम लोग इसको नहीं समझेंगे, जिसको कृष्ण के प्रति ममता है ऐसा भाव है वो लोग समझेंगे। महाप्रभु रहते तो आज उनकी क्या दशा होती सुन करके, रूप सनातन भी रहते तभी उनकी उसकी क्या दशा। इस प्रकार बल्भाचार्य ने भी अपनी सुबोधना टीका में ऐसा लिखा है, अभी देखो सुरात्मक स्वम दत्तापहरणम तथा त्रिदोष ब्रह्मणम प्राहु व्यवहारात जत्कृतम। इन चीजों का आरोप अक्रूर पर किया। आगे फिर गोपियां कहने लगी, न नंद सोनु खनभंग सौहृद समीक्षते न स्वकृतात् सुराजवत विहाय गेहान स्वजनान पतेश्च दास्य अद्धो अपगता नवप्रियः। इसका साधारण अनुवाद यह है, हाय है क्षणभंग सौहृद चंचल सौहृद, अभी किसी से प्रेम किया फिर दूसरे क्षण में प्रीति को काट दिया। कृष्ण प्रभु ये बतला रही है, आज जैसे भौरा एक फूल से प्यार करता है फिर दूसरा क्षण उसे छोड़ करके दूसरे फूल पर चला जाता है, फिर तीसरे पर चला जाता है, यहां तक कि गंदे फूलों पर भी बैठ जाता है उनको छोड़ करके। कृष्ण को इस प्रकार से दोषारोप ये कर रहे हैं, चंचल सहज नित्य नव प्रिय, नए नए प्रिय को खोजने वाला ये नंदनंदन कृष्ण अपने विरह में कातर गोपियों को देख रहे हैं, जिन्होंने कृष्ण के लिए ही पति पुत्र इत्यादि सबका प्रत्याग किया है, देह दैहिक सब कुछ प्रत्याग किया, और वे सामने विलाप कर रही हैं, कोई मूर्छित होकर के गिर पड़ रही हैं, कोई घोड़े का लगाम पकड़ रही हैं, कोई उसमें समर्थ न होकर के ऐसे ही विरह में मूर्छित हो रही हैं, और जिन्होंने कृष्ण का यह सब छोड़ करके कृष्ण की दासी बनी हुई है, लोक लज्जा तक को भी पी गई कृष्ण के लिए, और वो रो रही हैं विलाप कर रहे हैं, उनको ऐसा देखते हुए भी कृष्ण हमारे तरफ में नहीं देख रहे हैं, ये गोपियां कह रही हैं ये कृष्ण कैसे हो गए निष्ठुर, जिनके लिए हमने घर बार सब कुछ लोक लज्जा सब कुछ छोड़ दिया, आज ये कृष्ण निष्ठुर करके देख रहे हैं, मैं आ जाऊंगा ये भी नहीं कह रहे। सुखम प्रभाता प्रभाता रजनीयमाशिष सत्तम विभू पुरजोषिता ध्रुवम जासम प्रविष्ट मुखम प्रजस संपते की पाश्यंत अपांग कलित स्मिता समम। ओह गोपिया कर, आज हमारे लिए दुर्भाग्य का दिन है, दुर्दिन है, किंतु आज मथुरापुरी की स्त्रियों के लिए और वहां के लोगों के लिए आज सुख प्रभात है, किसी के लिए सुख प्रभात और किसी के लिए कृष्ण के समीप आएंगे और कृष्ण उनको अंगीकार कर लेंगे साज ही में, क्योंकि बहुत सुंदर राजकुमारियां वो हैं उन पूर्व नारियों के लिए आज यह रजनी प्रभात रजनी होगी, अत्यंत सुखमयी हो जो कृष्ण उनको अंगीकार करेंगे। और आज उनके लिए ब्राह्मणों का आशीर्वाद आज उनके लिए फला, आज दिन दिनों का उनका मनोरथ आज पूर्ण होगा। ताथा मुकुंद मधु मंजुभाषित गृहित चित्त पर वान मनस्वपी कथम पुनर्नम पति आशा आश्य थे बला ग्राम्य सलज्जास्मित विभ्रमयी भ्रमण। ओ हे अबलागन, अपनी सखियों को कह रहे हैं, पहले हम इसका अनुवाद कर लेते हैं, इसके बाद में इनकी टीकाओं का पाठ करेंगे। हे दुर्भागी अबला गोपियों, जति कहो जे कृष्ण जाएंगे और लौट आएंगे, ये आशा दुराशा मात्र है। वे समस्त मथुरा की रहने वाली गोप जो नारियां हैं, मधुर से भी मधुर, उनसे भी मधुरतर मनोहर वाक्यों से कृष्ण को ठग लेंगे, उनको कृष्ण को आकृष्ट कर लेंगे मधुर मधुर वाणियों से। अतः उनके अधीन होकर के कृष्ण धीर होने पर भी उनके लज्जा मिश्रित हास्य से भ्रांत हो जाएंगे और वो कभी नहीं लौटेंगे। क्यों आएंगे, क्यों अपना ये आरोप कर रहे हैं वहां पर, जो कृष्ण जाकर के जो लौट आएंगे ये संभव पर नहीं, असंभव है उनका लौट। है आज वहां दशार भोज वंश के लोग, अंधक लोग विष्णु और शास्त्र, आज उनके नेत्रों का महोत्सव वहां होगा, उनकी स्त्रियों का महोत्सव होगा, और हमारा क्या होगा, इसके विपरीत महोत्सव, इसमें संदेह की बात नहीं है। आज वो बड़ी प्रसन्न होंगे, वो सभी लोग लक्ष्मी के लिए प्रिय हैं, आज इस नंद देवकी नंदन का वो लोग दर्शन पाएंगे। और वे जो पथ में जो जाते समय में कृष्ण का दर्शन करेंगे ग्रामीण लोग, उनका भी अहो भाग्य होगा कि आज उस देवकी नंदन का दर्शन। देवकी नंदन थोड़ा सा क्रोध में भरकर इनको बतला रही, इस प्रकार से वो गोपियां कहने लगी। अब इसका हम व्याख्या हम अब परसों करेंगे, कल रामनवमी है, मैं तो आज ही से अगले वर्ष हम लोग दो तीन दिन का रखेंगे, यह रामायण का पूरा तुलसीकृत रामायण का पूरा पाठ हो जाए कीर्तन। कल यहाँ पर जितने उपस्थित लोग हैं दोपहर को आए, दोपहर में सवेरे से ही हम लोग आरंभ करेंगे, पहले वाल्मीकि रामायण से उनका चरित्र कुछ बतला करके, और फिर हम लोग तुलसीकृत रामायण से जैसे मृदंग करताल इत्यादि के सहारे हम लोग कीर्तन करेंगे, जहाँ तक हो सकेगा सुंदरकांड करके, और फिर हम लोग अयोध्या कांड में बाल कांड में कृष्ण का जन्म इत्यादि का हम लोग पाठ करेंगे। और अगले वर्षों में देखेंगे जो पूरे रामचरितमानस का हम लोग दो कितने एक दिन में हो जाएगा, दो दिन में
24 घंटे
में ना, तो 24 घंटे में हम लोग उसको प्रयास करेंगे अगले वर्ष, इस बार इतना ही रहेगा। तो कल आप लोग जितने हैं आप लोग सब आएंगे, और भी अच्छे अच्छे जो कीर्तन करने उनको भी लाएंगे, और कल हम लोग सवेरे से ही कीर्तन, हम लोग कब आरंभ करते हैं, 6 बजे 6:30 बजे कीर्तन के बाद में मैं बैठूंगा और कुछ प्रवचन करके, फिर इसके बाद में हम लोग गीता जितने रामायण की पोथियां हैं उन सबको ले आकर के वहां पर उपस्थित। गौ प्रेमानंद कौन कौन